आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान तिथि को बदला। अब 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को पड़ेंगे वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आज रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स में संशोधन समेत 27 प्रस्ताव हुए पारित। उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को भी मिली मंजूरी। आगरा में वायुसेना का MiG-29 विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पायलट और को पायलट सुरक्षित। और महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाय खाए के साथ कल से होगा शुरू। घाटों पर साफ सफाई समेत सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की मतदान तिथि को आगे बढ़ा दिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नई तिथियों के अनुसार अब इन सीटों पर मतदान 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को होगा। हालांकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि 13 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान होने के कारण कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने चुनाव आयोग से तिथि में परिवर्तन की मांग की थी, जिसके बाद तारीख में बदलाव का फैसला किया गया है। प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामो, कटहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश के मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने पर निर्वाचन आयोग का आभार जताया है।
उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा का उपचुनाव है, उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाए। चूंकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिस धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्योहार है, लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3-4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक्ति तीर्थ में या अन्य गंगा स्नान पे चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में आज 27 प्रस्तावों को कैबिनेट की सहमति दी गई है। इसमें उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस फैसले के तहत महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती के 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष किया गया है। इससे हजारों की संख्या में शिक्षकों को उनके निवास स्थान के पास समायोजन मिल सकेगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस बारे में जानकारी दी।
नई नियमावली इस बार लाई गई है, जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024। और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिर्फ इतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और खासतौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती है या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया, ये इसमें बदलाव है।
मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है और ना ही कोई नॉमिनी है, तो ग्रेजुटी का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकता है।
ये उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन किया गया है। अभी तक ये व्यवस्था थी कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपने पीछे कोई अपना रिटायरमेंट के बाद कोई वारिस नहीं छोड़ जाता है या कोई नॉमिनी नहीं बनाता तो उसका पैसा ग्रेच्युटी का सरकार को समाहित हो जाता। अब व्यवस्था ये हो गई। आज जो मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया प्रस्ताव ये था कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय से इस प्रकार की परिस्थितियों में कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ले आता है तो उसको वो पैसा दे दिया जाएगा।
बैठक में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एफडीआई पॉलिसी में संशोधन, नई शीरा नीति को भी मंजूरी दी है। आगरा में आज वायुसेना का MiG-29 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना का यह विमान उड़ान के दौरान आगरा के कागरौल के सोंगा गांव के पास खाली खेत में क्रैश हो गया। विमान में सवार पायलट और को पायलट पैराशूट की मदद से विमान से निकल गए। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई। मामले की जानकारी मिलते ही तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ये विमान पंजाब के आदमपुर से रूटीन एक्सरसाइज के लिए आगरा जा रहा था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत कल नहाय खाय के साथ होगी। इस पर्व पर महिलाएं संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी। छठ को लेकर प्रदेश भर में बाजारों में रौनक है। फलों और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। घाटों की साफ सफाई के साथ छठ वेदियों की रंगाई पुताई का काम भी पूरा किया जा रहा है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में छठ घाटों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को छठ की बधाई दी और लोगों से पर्व के दौरान नदियों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की।
अनेक घाटों पर इस तरह की व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। पूरे राज्य की मैं बात करूं तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जगहों पर नगरों में हमारे इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। मैं सभी भाग लेने वाले छठ के सभी श्रद्धालुओं को, माताओं बहनों को विशेष रूप से मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं छठ के पर्व पर। और साथ में मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं कि छठ जो है पिछले वर्षों में हमने ये दिखाया है, छठ का त्यौहार लाखों लोगों की भागीदारी वाला एकता और त्यौहार भी स्वच्छ हो सकता है। गोमती नदी स्वच्छ दिख रही है, उसी तरह की स्वच्छता छठ के दिन और छठ के दिन के बाद भी बरकरार रहे, ऐसी मेरी अपील है सबसे।
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने छठ पर्व से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि घाटों, पूजा स्थलों, नदियों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए। सार्वजनिक जगहों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फूट पेट्रोलिंग की जाए। छठ पूजा को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। गोरखपुर के एडीजी रेंज ने बताया कि ऑपरेशन कवच के तहत सीमा पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं वाराणसी में आज छठ की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने असी घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, नमो घाट के साथ अन्य पूजा स्थलों पर निरीक्षण किया। जल पुलिस और एनडीआरएफ को भी मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। छठ पूजा को लेकर रेलवे 185 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। दिल्ली और एनसीआर से देश के विभिन्न भागों के लिए आज 25 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इनमें वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, इंदौर और तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। रेलवे की ओर से 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच 145 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि छठ पूजा के लिए लोगों की यात्रा आसान हो सके। इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे ने आज 3 विशेष गाड़ियां चलाई। वहीं कल भी यात्रियों की सुविधा के लिए 3 विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी और 37 गाड़ियां उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र से गुजरेंगी। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक सचिंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
इसमें आप देखेंगे कि यहाँ क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमारे काफी कमर्शियल के स्टाफ लगे हुए हैं और आरपीएफ के भी जो हमारे सैनिक हैं वो रिफ्लेक्टिव जैकेट्स में हैं ताकि दूर से ही लोग उनको पहचान सकें। जितने हमारे काउंटर्स हैं ये चालू हैं और इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोग जहाँ नॉर्मली एक रहता है वहाँ 3-3 लोग हमने लगा रखे हैं। एक हमने हेल्प डेस्क उधर लगा रखा है कि कोई भी अगर किसी यात्री को जो स्पेशल ट्रेन में जा रहा है उसको प्रॉब्लम है वो उसमें बता सकता है। वहाँ पे एडिशनल फर्स्ट एड बूथ हमने लगा रखा है ताकि कोई अगर किसी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम आती है हमारा स्टाफ जा सके। और एडिशनल जितनी भी हमारी व्हीलचेयर्स हैं और स्ट्रेचर्स सारे हमारे यहाँ पे तैनात हैं।
महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में 13 अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में कल श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की नगर प्रवेश यात्रा में अखाड़े के 1000 से अधिक साधु संतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अखाड़े के साधु संतों का स्थानीय लोगों और कुंभ मेला प्रशासन ने फूलों से स्वागत किया। 14 दिसंबर को जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में अखाड़े का कुंभ क्षेत्र में प्रवेश होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान तिथि को बदला। अब 13 नवम्बर के बजाय 20 नवम्बर को पड़ेंगे वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आज रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स में संशोधन समेत 27 प्रस्ताव हुए पारित। उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को भी मंजूरी। आगरा में वायुसेना का MiG-29 विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पायलट और को पायलट सुरक्षित। और महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाय खाए के साथ कल से होगा शुरू। घाटों पर साफ सफाई समेत सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।